कृष्ण प्रभु जी इधर बहुत जाएगा।
वृंदावनेश्वरी वृंद
हरे
कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे।
उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आ जाइए प्रभु जी, बार बार प्रभु जी को बोलने की जरूरत ना पड़े, जगह है तो आप आ जाइए यहाँ पे पास में। आ जाइए ताकि पीछे जो भक्त बैठे हैं वो आगे आ सके, उनको बैठने का चांस मिले। तो एक बार फिर हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस सत्संग कार्यक्रम में आए हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो हम कर रहे हैं, ये हम समर्पित करना चाहेंगे परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज के चरणों में। महाराज की तबीयत आजकल ठीक नहीं है और वे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा उन पर बनाए रखें और जो भगवान चाहते हैं वही होगा। और हम ये चाहते हैं कि महाराज को हमारे पास ज़्यादा दिन तक रखें ताकि हम उनका संग प्राप्त कर सके और उनसे शिक्षा प्राप्त कर सके कि इस लास्ट घड़ी में भी, मतलब ऐसा है कि जब महाराज की तबीयत इतनी ठीक नहीं है फिर भी वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और बड़ी तीव्रता से करनी चाहिए। आज हमने सुबह देखा कि महाराज ने 3 घंटे का श्रीमद् भागवतम क्लास दिया था कुछ दिन पहले। हमको थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम प्रोग्राम में आना बंद कर देते हैं। तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए ये सब बड़े महान आचार्यों से कि वो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह हमें बिहेव करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्वयं स्फूर्ति कृष्ण प्रभु गिरिवरधारी प्रभु और जय केशव प्रभु का कृतज्ञता प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये आदेश दिया और कहा कि मैं यहाँ पे आके आपके सामने कुछ कहूँ। तो जैसे कि मैं कई बार बताता हूँ कि हमारी कोई योग्यता नहीं है यहाँ पर आके बैठकर और भगवद गीता जैसे विषय के ऊपर कुछ बोलना, लेकिन जो भी गुरु महाराज से भक्तों से जो सुना है उसे यथा स्मृति जो भी याद आता है और जो हमने सीखा है उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और मैं पूर्णानंद प्रभु को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके घर पे आज ये प्रोग्राम है और उन्हीं की इच्छा थी कि मैं आऊँ, बट भगवान की कृपा से जो कुछ भी कहिए कि वो आज है नहीं, इंडिया गए हुए हैं। तो मैं जब कभी भी जब इस तरह बोलने का मौका मिलता है तो हमेशा ये बात अपने आप को स्मरण कराना चाहता हूँ, करवाने की कोशिश करता हूँ और दूसरों से भी कहता हूँ कि हम जब ये सत्संग कार्यक्रम में आते हैं तो हमारा मूड कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से सत्संग कार्यक्रम में आना चाहिए। तो हमारा मूड उस तरह से होना चाहिए कि एक मरीज एक पेशेंट अस्पताल जाता है हॉस्पिटल जाता है, ना कि एक टूरिस्ट जो होटल में जाता है। देर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए पर्सन ए टूरिस्ट गोइंग टू द होटल एंड ए पेशेंट गोइंग टू द हॉस्पिटल, बहुत फर्क है। क्या फर्क है? क्योंकि जो टूरिस्ट होता है वह होटल में जाता है किस लिए? मनोरंजन के लिए। वो सोचता है एंटरटेनमेंट करूंगा, थोड़ा पैसे दूंगा मैं और थोड़ा भोग करूंगा, तो उसकी इच्छा ये रहती है, भोग करने की इच्छा रहती है। और एक मरीज जो होता है वो बहुत डेस्परेट होता है, जब वो हॉस्पिटल जाता है तो ये नहीं सोचता कि वहाँ जाकर मैं मनोरंजन करूँगा ना, हॉस्पिटल में जाऊँगा 2 घंटा मेरे को एनएमसी में वेट करने को मिलता है तो उधर बैठ के टीवी देखूँगा, ये भावना से कोई नहीं जाता है ना। वो जाता है कि नहीं, मेरी तबीयत खराब है, बहुत ही ऐसी अवस्था में हूँ मैं, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ शुद्धिकरण के लिए। तो एक मरीज जो होता है ए पेशेंट गोज फॉर प्यूरिफिकेशन फॉर शुद्धिकरण। तो हम जब भक्तों के संग में आते हैं तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं भक्तों के बीच में मनोरंजन के लिए नहीं जा रहा हूँ, या ये सोशल गैदरिंग नहीं है कि भाई और कुछ काम नहीं कर सकता शाम को शुक्रवार के दिन तो मैं जाता हूँ भक्तों का संग लेता हूँ। नहीं, हमारी हमेशा ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, मैं भक्तों के संग में जा रहा हूँ। तो जैसे एक मरीज होता है वो तीन चीज पे डिपेंड होता है, क्या तीन चीज? एक डॉक्टर पे, दूसरा प्रिस्क्रिप्शन पे और तीसरा दवाई पे। ये तीन चीज पे वो डिपेंड होता है कि डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पता लगाता है कि उसकी बीमारी क्या है, उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और फिर वो दवाई लेता है। और ऐसा भी नहीं कि दवाई ले जाके हमने सेल्फ में रख दी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उस दवाई को जब ग्रहण करेंगे तब उसका फायदा होगा। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं और उनके भक्त वो कंपाउंडर्स हैं सारे के सारे, वो उनको असिस्ट कर रहे हैं। और हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ये श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत है। जब हम इसका आश्रय लेंगे और हमारी जो दवाई है वो है हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम ये दवाई लेंगे जो बराबर प्रिस्क्रिप्शन जो दी है श्रीला प्रभुपाद जी ने जो दी है और प्रॉपर भक्तों से, तभी उसका असर होगा। एक बार एक व्यक्ति आया श्रीला प्रभुपाद जी के पास और कहने लगा कि प्रभुपाद जी आपके मंदिर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन घंटी कहाँ है? जैसे हमने देखा रहेगा कि जो भी मंदिर में हम अब तक गए हैं हमेशा हमने घंटी देखी है बजाने के लिए, पर इस्कॉन के मंदिर में घंटी नहीं दिखाई देती है। देखिए बहुत सारे मंदिरों में आप जाओगे इस्कॉन के मंदिर में घंटी नहीं दिखेगी, तो कहीं जाके पहले बार आदमी सोचता है मंदिर में आया हो लेकिन घंटी कहाँ है। तो प्रभुपाद जी को पूछा कि आपके मंदिर बड़ा सुंदर है लेकिन घंटी कहाँ है? प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारी घंटी जो है वो हमारे दांतों के बीच में है, हमारी जिह्वा, और जब बजती है तो केवल एक ही आवाज आती है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो यही हमारी मेडिसिन है, इसी का हम अगर आश्रय लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो हम अपनी जिह्वा का जो ये प्रयोग कर रहे हैं वो मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन उसके दो कारण हैं। उसके दो कारण ये है कि हम अपने चित्त के शुद्धिकरण के लिए और भगवान श्री कृष्ण का चित्त आकर्षित करने के लिए, ये दो कारण है कि हम बोलते हैं। तो भगवान के गुणानुवाद का जब वर्णन करते हैं तो इसके पीछे सिर्फ ये दो कारण है कि हमें हमारे हृदय का शुद्धिकरण करना है और भगवान का चित्त आकर्षित करना है, क्योंकि यही दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वो ये कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। और हम देखेंगे जितना हमारे पास टाइम मिलता है कि किस तरह ये दो कार्य हम कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से, अध्याय सातवां भगवत ज्ञान, और श्लोक क्रमांक मुझे कहा गया है 19 से चर्चा करेंगे। तो हमने देखा है कि भगवद गीता के सातवें अध्याय की शुरुआत होती है और भगवान कहते हैं तत् सुनो, कि ध्यान से सुन अर्जुन। तो ये बहुत जरूरी है, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखे हैं कि जब हम सुनने के लिए बैठते हैं तो एकाग्र चित्त होकर हमें सुनना चाहिए कि वक्ता क्या कह रहा है, नहीं तो आधे समय हम जप करते रहते हैं, आधे समय हम सोचते रहते हैं, मन भटक जाता है इधर से उधर, पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, कभी कभी प्रसंग किधर से किधर निकल जाता है और ध्यान नहीं आता है, क्योंकि हरी कथा सुनना कोई खाने का काम नहीं है। कई बार ये भी हमारे लिए तपस्या है एक तरह की शुरुआत में, और बाद में जब एक बार जब मन लग जाएगा तो परीक्षित महाराज जो 7 दिन तक और 7 रात तक सुनते रहे, और एक बार यूं हुआ कि सुखदेव गोसाई महाराज ने परीक्षित महाराज से कहा कि अघासुर का वध हुआ और व्रजवासियों को 7 दिन 1 साल के बाद पता चला और वो आगे बढ़ गए। तो तुरंत परीक्षित महाराज ने उनको रोका कि अरे रुकिए रुकिए, आपने ये क्या बात कह दी कि अघासुर का वध हुआ और 1 साल के बाद पता चला, 1 साल तक क्या हुआ? तब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि वाह, है ना, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, वेरी गुड। नहीं तो सुनते सुनते कभी कभी झपकी लग जाती है, कभी नींद आ जाती है, प्रसंग कहाँ से कहाँ पता चला जाता है। तो फिर उन्होंने सारी की सारी ब्रह्म विमोहन लीला उन्हें सुनाई और पूरा कहा कि क्या हो गया। तो एक बार की बात है, संत तुकाराम महाराज जो हमारे महाराष्ट्र से है, एक बार हरि कथा कर रहे थे और हरि कथा करते करते इतने अव्वल डिवोटी थे कि हरि कथा में तल्लीन थे, तो 7-8 बजे इस तरह कहना शुरू किया और आँख बंद करके कीर्तन कर रहे थे और हरि कथा कह रहे थे और पता नहीं चल रहा था कि समय कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो जो लोग हरि कथा सुनने के लिए बैठे थे वो कई लोगों को नींद आने लगी, कई लोगों को लेट हुआ था उठ के जाने लगे, कुछ लोग वहीं बैठकर सोने लगे और फिर वो भी उठ के जाने लगे, तो जो हॉल जो खचाखच श्रोताओं से भरा हुआ था, तो देखते देखते वो हॉल धीरे धीरे खाली होने लगा, और होते होते उनका प्रवचन चल रहा था और रात के दो तीन बज गए सुबह के अर्थात। तो उन्होंने देखा, जब उनकी खुली तो देखा कि सारे के सारे लोग जा चुके हैं, सिर्फ एक व्यक्ति उनके सामने बड़ी तल्लीनता से बैठकर हरी कथा सुन रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, आपको हरी कथा सुनने में कितना रुचि है, ये जानकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, आपकी भगवान पे बहुत कृपा है। तो ये बोले कि नहीं महाराज, ऐसी गलत फहमी अपने हृदय में मत रखिए कि मुझे हरी कथा सुनने में रुचि है। मैं हरी कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठा नहीं हूँ, मैं भी जाने वाला था, लेकिन जिस कंबल पर बैठकर आप हरी कथा कर रहे हो वो कंबल मेरा है, वो कंबल लेने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो बताते हैं कि हरी कथा सुनना इतना आसान काम नहीं है। कई बार हम अपने दुनिया में रहते हैं, ऐसी कई कथा है एक्चुअली, कर जहाँ पर एक बार एक महाशय कथा कर रहे थे, और कथा करते करते उनकी लंबी सी दाढ़ी थी, और जब वो कथा करते थे तो एक बूढ़ी औरत थी, वो उनकी कथा में आती थी और जोर जोर से रोती थी। तो उनको लगता था अरे देखो क्या सॉलिड इफेक्ट है मेरे कथा का, कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे। तो जब 7 दिन पूरे हो गए भागवत कथा करके चले गए, तो उन्होंने पूछा कि माई तुम्हें मेरा कौन सा प्रसंग अच्छा लगा, परीक्षित महाराज को श्राप मिला वो अच्छा लगा तुम्हें, कि भगवान कृष्ण ने जो लीला की वो प्रसंग किया, आप किस तरह रो रही थी। तो वो बोली प्रसंग कौन सा प्रसंग, कौन कृष्णा, कौन परीक्षित महाराज। तो बोला अरे आप रोज बैठ के रो रहे थे मेरे सामने, तो क्या वो अच्छा। बोले मेरा एक बकरा था जिसकी लंबी दाढ़ी थी आपके जैसी, और आप जब हरी कथा करते थे तो आपकी दाढ़ी आगे पीछे हिलती थी, और मुझे वो देख के मुझे मेरे बकरे की याद आती थी और मैं रोती थी। तो स्पीकर अपने दुनिया में है, श्रोता अपने दुनिया में है, कौन कहाँ पे जा रहा है किसी को पता नहीं। इसके लिए भगवान कहते हैं मैया सक्त मना पार्थ योगो युज्यम मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तत्सुणु। पहला भगवान कहते हैं तत्सुणु, के हे अर्जुन ध्यान से सुन, क्योंकि अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ। बताते भगवत गीता जो है उसमें 18 अध्याय है, और 18 अध्याय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 1 से 6 अध्याय, 7 से 12 अध्याय और 13 से 18 अध्याय। तो पहले जो अध्याय है वो कर्म योग के बारे में बात करते हैं, लास्ट के अध्याय जो है वो ज्ञान योग के बारे में बात करते हैं, और मिडल के जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग के बारे में बात करते हैं। तो बताते कि भगवद गीता सैंडविच के जैसी है, ये सैंडविच के 2 ब्रेड होते हैं और बीच में मसाला भरा हुआ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बर्गर के अंदर भी बीच का मसाला भरते हैं। तो ये जो बीच का मसाला है वो 6 अध्याय है, और उसका कल्मिनेशन 12वें अध्याय में होता है, लेकिन शुरुआत 7वें अध्याय से होती है। तो 7वें अध्याय में जो भगवान कहते हैं, अभी भक्ति योग के बारे में भगवान बताना शुरू कर रहे हैं अर्जुन को, तो वो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ध्यान से सुन। हालांकि अर्जुन ध्यान से सुन रहा है, जैसे परीक्षित महाराज भी, जब सुखदेव गोस्वामी महाराज भी जब बताते हैं तो कई बार उनको ऐसा लगा कि अरे परीक्षित सो गया है कि नहीं, बीच बीच में पूछ लेते थे कुछ। तो ऐसा कहते हैं कि अरे तत् सुनो, ध्यान से सुनो। फिर वो बता के भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे अभी पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान कहूंगा, जिसे सुनने के बाद और कुछ सुनने लायक शेष नहीं रह जाता। तो भगवत गीता जो मैसेज देती है वैसा मैसेज दुनिया की कोई पुस्तक नहीं दे सकती है कहीं पे, क्योंकि आप और भी कहीं देख लो, कई बार बड़े बड़े महात्मा गण हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था कि मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन तुम्हें सुनने के लिए कैपेसिटी नहीं है, यू नो आई वॉन्ट टू टेल मोर बट यू कांट टेक इट एक्चुअली। सो इसके लिए, लेकिन भगवान ने क्या कहा कि मैं तुम्हें वो बताऊंगा कि उसके जानने के बाद कुछ सुनने लायक रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे दूसरे धर्मों में भी और कई बार बताया है, तो बताते हैं कि अरे कम से कम यू नो तुम्हारी माँ के साथ यू नो विवाह मत करो, ऐसा कहा गया है। कि जैसे बहन से विवाह करते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि सेम माँ की जो बच्ची है उससे मत करो। तो कई बार कई चीज़ है, लेकिन भगवान यहाँ पे जो ज्ञान देते हैं वो पूर्ण है, अपौरुषीय कहते हैं उसको, इनफेलिएबल। तो भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित युगति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। वो बताते हैं कि बहुत सारे मनुष्यों में केवल कोई थोड़े व्यक्ति होते हैं जो भगवत प्राप्ति का प्रयास करते हैं, और उन भगवत प्राप्ति के प्रयास करने वालों में से भी बहुत ही कम लोग, एक कोई बिरला ही मुझे तत्व से जान सकता है। तो ये सब इसकी पहले चर्चा हुई है, बट हम सिर्फ बताते हैं कि हम कहाँ पर आ रहे हैं। फिर भगवान अपने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार की 8 जो भिन्न प्रकृति है उसके बारे में बताते हैं। और फिर इस तरह से आगे जाके भगवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक कहते हैं, जो 7वां श्लोक है 7वें अध्याय में, 7.7, वेरी इजी टू रिमेम्बर। वह कहते हैं मत्तः परंतर न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सारा संसार है वो मुझ पे आश्रित है, उसी तरह जिस तरह धागे पे मणि आश्रित होते हैं, और अगर धागा टूट गया तो सारे मणि बिखर जाएंगे। तो भगवान है वो उसको बता के रखते हैं। और फिर कई चीज भगवान ने कही अपने बारे में, रसो हम अक्सु कौनते है, बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो इस तरह की जो भी चीज है, जब अर्जुन पूछते भी भगवान से कि मैं तुम्हें कैसे याद करूँ, और प्रभुपाद जी ने भी, प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि किस तरह 24 घंटे में भगवान को याद करूँ, तो प्रभुपाद जी ने कहा आप पानी पीते हो, हाँ, तो सोचो कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, भगवान कहते हैं। भगवान जो है, क्योंकि अगर कृष्ण पानी में नहीं हो तो उसका स्वाद नहीं आवे, और एक प्यासे व्यक्ति को पानी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई सच में प्यासा है तो सिर्फ पानी ही उसकी मिटा सकता है। यानी इस तरह से भगवान कहते कहते हैं, और जब अपनी प्रकृति का वर्णन करते हैं तो वे कहते हैं कि इस प्रकृति को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो उसको पार कर जाते हैं। तो ये विरोधाभास है। वो कहते हैं देवी हैश गुणमयी मम माया दुरतया मामे भी प्रपद्यंते माया मितम तरंतिते, कि जो मेरी शरण में आता है वो उसको पार कर ले जाता है। फिर लास्ट जो वीक में जब भी गिरवरधारी प्रभु ने जब क्लास दिया था तो उन्होंने इसके बारे में बताया था, 5, 15, 16 अध्याय जो श्लोक है उसमें 4 प्रकार के लोग जो है जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, और 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण लेते हैं। किसी को याद है वो कौन कौन थे? 4 जो शरण नहीं लेते वो कौन है? नहीं नहीं, वो शरण लेते हैं, वो जो नहीं लेते वो कौन है? बरोबर, नराधम इज वन, मूढ़ा, नहीं नहीं, वो सब आप बोल रहे हैं वो सुकृति लोग के बारे में बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ दुष्कृति वाले लोग। हाँ, किसी को श्लोक याद है? बोलो मधु, नमान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान असुरम भाव माश्रित, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो कई बार जब प्रभुपाद कहते थे तो प्रभुपाद रास्कल और इस तरह से कहते थे, तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्यों मतलब इस तरह से इतना क्रोधित होकर बोलते हो, तो भगवान ने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं, मैं तो खाली रिपीट कर रहा हूँ। तो ये सब जो है वो भगवान कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो एक बार एक रिपोर्टर आके प्रभुपाद जी से पूछने लगा कि प्रभुपाद जी इतने सारे स्वामी बाबा योगी ये सब आ रहे हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम अबाउट देम, एंड प्रभुपाद ने कहा दे आर ऑल बोगस। तो इतने छोटे से आंसर से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बोला अरे ये क्या इतना सा कह दिया दे आर ऑल बोगस। तो उसने पूछ लिया प्रभुपाद से, प्रभुपाद कुड यू प्लीज एलोबरेट, प्रभुपाद ने कहा यस दे आर रास्कल्स ऑल्सो। तो ये प्रभुपाद जी बताते थे। तो ये भगवान, एनीवे इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर 4 प्रकार के जो अच्छे लोग है वो आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो अर्थार्थो जिज्ञासी ज्ञानी च भरतर्षभ। वो 4 प्रकार के लोग कौन है? आर्त, आर्त मतलब, आर्त मतलब दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग है जो भगवान के शरण में आते हैं, जो हमें गिरवरधारी प्रभु जी ने बताया था लास्ट टाइम। तो एक भक्त बता रहे थे कि आज का जमाना ऐसा है कि इसमें 4 प्रकार के लोग आते हैं भगवान की शरण, आर्तो 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 और आर्थो, सारे लोग दुखी होके आते हैं। तो ना कोई ज्ञानी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आ रहा है, जो जिज्ञासु वो भी नहीं आ रहा है ना, अर्थार्थी लोग बहुत है, लेकिन अर्थार्थी कई लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, पर भगवान के पास बड़े दुखी होके हम लोग आते हैं। और हम देखेंगे अगर टाइम रहा तो गजेंद्र भी किस तरह से दुखी होके भगवान के पास पहुंचा था। तो बताते हैं कि 4 तरह के लोग है, और भगवान फिर आगे के श्लोक में कहते हैं कि इसमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि चारों लोग जो है वो सुकृतिनो है, वो अच्छे लोग है, उदार चित्ता है, लेकिन इन 4 में से भी मुझे कौन पसंद है? भगवान की भी पसंद ना पसंद होती है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान जो है वो भी पर्सनल है, उनकी भी हर चीज का पसंद होता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी नहीं है कि ना इधर उधर कर दिया। भगवान कहते हैं कि मेरा मैं किसको पसंद करता हूँ? कि दुखी है ठीक है आगे आ जा, अर्थार्थी है आ जा चलो नो प्रॉब्लम, जिज्ञासु है आ जा, लेकिन जो ज्ञान से आता है। और इसलिए भगवान ने कई जगह कहा है, कितने सारे श्लोक भगवद गीता में मिलेंगे जिसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे तत्व से जानने की कोशिश करता है वह मुझे प्रिय है। जैसे मनुष्याणाम सहस्त्रेषु एक श्लोक उन्होंने कहा, फिर भगवान ने और कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि जो मुझे तत्व से समझने की कोशिश करता है वो मुझे बड़ा प्रिय है। भगवान कहते हैं कि वो मुझ में और मैं उसमें हूँ, वह मुझे प्रिय है। और फिर भगवान कहते हैं निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ, वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो अभी हम आते हैं 19वें श्लोक पे, तो इसको हम एक दो बार दोहराएंगे, फिर जितना समय मिलेगा उसमें चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे पीछे दोहराइए, बहु नाम जन्म नामन्ते,
बहु नाम जन्म नामन्ते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेव सर्वमिति,
वासुदेव सर्वमिति,
महात्मा सुदुर्लभ,
महात्मा सुदुर्लभ,
बहु नाम जन्म नामन्ते,
बहु नाम जन्म नामन्ते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेव सर्वमिति,
वासुदेव सर्वमिति,
स महात्मा सुदुर्लभ,
महात्मा सुदुर्लभ,
बहु नाम जन्म नामन्ते,
बहु नाम जन्म नामन्ते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेव सर्वमिति,
वासुदेव सर्वमिति,
स महात्मा सुदुर्लभ,
महात्मा सुदुर्लभ।
कृपया दो प्रभु जी और दो माता जी इसको दोहरा सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बहुनाम जन्म नामन्ते,
बहुनाम जन्म नामन्ते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेव सर्वमिति,
वासुदेव सर्वमिति,
महात्मा सुदुर्लभ,
महात्मा सुदुर्लभ,
बहुनाम जन्म नामन्ते,
बहुनाम जन्म नामन्ते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेव सर्वमिति,
वासुदेव सर्वमिति,
महात्मा न सुदुर्लभ,
महात्मा सुदुर्लभ,
बहु नाम जन्म नामन्ते,
ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेव सर्वमिति,
महात्मा सुदुर्लभ, बहु नाम जन्म नामन्ते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति, महात्मा सुदुर्लभ, बहु नाम जन्म नामन्ते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति,
मृत्यु के चक्र के अंते अंत में, ज्ञानवान ज्ञानी माम मेरी प्रपद्यते शरण ग्रहण करता है, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सर्वम
सब कुछ
इति इस प्रकार सह ऐसा महात्मा
महात्मा
सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। अनुवाद और तात्पर्य श्लेषी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कृपया दोहराइए, अनेक जन्मांतर के बाद,
अनेक जन्मांतर के बाद,
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद,
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद,
जिसे सचमुच ज्ञान होता है,
जिसे सचमुच ज्ञान होता है,
वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे?
भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्मा आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेष बात की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत इससे स्वतंत्र नहीं है, उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि ये प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेव मई व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या प्रतापस्वर उपनिषद में 3.1415 में मिलती है। सहस्त्र श्रेष्ठा पुरुषः सहस्त्र सहस्त्रपाद सभी विश्व को
चक्षुषीं न श्रोत्राणि न मनानि सर्वाणि भवन्ति।
जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ हैं, किंतु यदि वे भगवान है, भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलना अर्थात भगवद गीता 7.17 तथा 11.40
श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी ने इतना उत्कृष्ट तात्पर्य लिखा इस पे और कई श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किए यहाँ पर। कई बार प्रभुपाद जी कई सारे श्लोक है जो कोट करते रहते हैं अलग 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 जगहों से। तो प्रभुपाद जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जो भगवद गीता पे उन्होंने व्याख्या की है, जो तात्पर्य लिखा है, वह अनपैरेलल है। मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है,
समानांतर
नहीं है जो भी उन्होंने लिखा है। क्योंकि हमें बहुत सारी और दूसरी भगवद गीता बाजार में मिल जाएगी जिसके अंदर कई चीज़ें सही तरह से लिखी नहीं है और जो लिखने वाले व्यक्ति ने अपने मन से कई चीज़ें उसमें कोट की है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो अपने भगवद गीता लिखने के बाद इसका नाम भी रखा वह यथारूप एज इट इज जशिया है तशी तेना मूल रूपे इस तरह की। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे पास इस सिर्फ 3 पुस्तकें अगर हमने पढ़ ली है अपने जीवन में तो इसके अलावा और हमें कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे ग्रंथों का जो निचोड़ है जो प्रभुपाद जी ने इसके अंदर हमको दे दिया है वह है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो ये 3 पुस्तक है जिसको हम BBC भी बोल सकते हैं, भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो ये BBC का ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, उसमें सारी खबर मिल जाती है हमारे को, तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सुश्रुत प्रभुपाद जी ने ये जो पुस्तकें लिखी हैं वो अपनी रात की निद्रा को भंग कर करके और ये सारी पुस्तकें लिखी है किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम उसको पढ़े। लेकिन कई बार हम भगवद गीता लेते हैं एज इट इज और उसको रख देते हैं एज इट इज, उसको खोल के नहीं पढ़ते हैं। तो एक बार एक ब्रह्मचारी बता रहे थे कि कभी जब वो किसी व्यक्ति के घर पे गए और उन्होंने उनको कहा कि भाई कुछ आप चर्चा करो, कुछ बोलो, तो उन्होंने कुछ मांगा कि भाई कोई कैंटो मांगा भागवतम का कि भाई ये आठवां स्कंद है कि आप जरा दो। तो आठवां स्कंद लेके आए और प्लास्टिक फाड़ के फिर उनको दिया। तो उन्होंने कहा पढ़ा नहीं अभी तक? तो कह नहीं प्रभु जी, आपके लिए रखा था। तो कहा कि जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ना चाहिए। जैसा अगर कोई वड़ा पाव हमारे साथ में सामने लेके आए, इडली सांभर लेके आए, तो उसको दंडवत नहीं लगाना, उसको ग्रहण करना है। तो उसी तरह भगवद गीता को भी पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी ने इतना सब दे दिया है, और इसलिए अभी अगर हमारे पास समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि पुस्तक का दो चीजें, एक तो उनको पढ़ना है और दूसरा वितरण करना है। हमें तीन चीज का वितरण हमेशा करना चाहिए, हरिनाम का वितरण, प्रसाद का वितरण और ज्ञान का वितरण। ज्ञान का वितरण पुस्तक के माध्यम से। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बताऊंगा कि हमने भगवद गीता जो ई डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो निकाली थी उसके अंदर फॉर्चुनेटली हमने कई भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट की है अब तक। 380 से ज़्यादा भगवद गीता और कई कृष्णा बुक, श्रीमद् भागवतम के 7 सेट, 3 फर्स्ट कैंटो, 70 वैल्यू पैक बुक और 1 चैतन्य चरितामृत का वितरण हुआ है। और गल्फ में ये सब कंट्री कर रही है, उसमें भगवान की दया से आज का स्कोर ये है कि आबू धाबी नंबर 1 पे है। हालांकि मैं आपको एनीवे जो बात आ चुकी है, एक्चुअली मेरी इच्छा नहीं थी अभी ये बताने की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमारा चार्ट है जो मैंने बनाया, इसमें बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। सो ये भगवद गीता। और दूसरा जो स्लाइड आप देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि ये दामोदर देश, श्याम देश, कृष्ण कथा देश, अवतारी देश, कन्हैया देश और मथुरा देश का चार्ट है। इसके अंदर अवतारी देश आज नंबर 1 पे है, 25 दिन तक और टाइम है, मतलब 25 जनवरी तक। तो पता नहीं, हमारी ये इच्छा नहीं है कि हम प्रथम आए या द्वितीय आए, लेकिन हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक हम वितरित कर सके, और फिर भी अगर लास्ट आएंगे तो चलेगा। इसका मतलब ये है कि बाकी सब लोगों ने और ज़्यादा वितरण किया है, तो बहुत ज़रूरी है ये वितरण करना। और अगर दुबई और शारजा से हमारा कंपेरिजन किया जाए तो हम उनके सामने ना के बराबर है। उनका जो स्ट्रेंथ है और हमारा जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत फ़र्क है ना। वहाँ पर हज़ारों भक्त गाने और यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। तो नहीं, वे बहुत ज़रूरी है। हाँ, श्याम देश मतलब शारजा, अजमान को शिवा सांगन कहते हैं, पर अभी वो एक शारजा का ही पार्ट माना जाता है। एनीवे, तो इसमें प्रभुपाद जी ने इतना अच्छी तरह से जो प्रपट दिया है, लेकिन एक चीज जो जानने के लायक है, जो पहले श्लोक से भगवान बता रहे हैं कि ये चार उदार चेता व्यक्ति है, लेकिन इसमें से जो ज्ञानी है उसको मैं पसंद करता हूँ। तो बताते हैं कि भगवान के पास पहुंचने के लिए, एक्चुअली भक्ति करने के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है, वो हाथ में भगवद गीता लिया है, रो रहा है और भगवद गीता को उल्टी पकड़ के रखा है उसने, तो सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे, कि तुम भगवद गीता को क्यों इस तरह से पकड़ के बैठे हो और तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे को मेरे गुरु ने कहा है कि भगवद गीता पढ़ना है, इसलिए मैं लेके बैठा हूँ। तो बोला, लेकिन उल्टा क्यों पकड़ के रखा? तो बोला, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, और इसके लिए मैं इसको उल्टा पकड़ के बैठा हूँ। तो बोला, ठीक है, तुम रो क्यों रहे हो? एक तो भगवद गीता पढ़ रहे हो, दूसरा उल्टा पकड़ के रखा है, और तीसरा रो रहे हो। तो बोले कि क्यों नहीं रो हूं मैं देख रहा हूँ कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है, जो सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत को चलाते हैं, वह अपने एक भक्त के सारथी बन के बैठे हैं, ड्राइवर। और ड्राइवर इतना अच्छा पोजीशन नहीं होता है ना, बोलते हैं कि आपको एक नई कंपनी में पोस्ट देते हैं ड्राइवर की, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अरे ड्राइवर की पोस्ट दे रहा है मेरे को, तो ये ड्राइवर अच्छा नहीं है। और एक चीज और है कि उस जमाने में जब युद्ध करते थे, तो इस बार तो हमारे पास हॉर्न है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस समय जब युद्ध करते थे तो रथी से रथी, अतिरथि से अतिरथि और महारथी से महारथी युद्ध करता था, तो बोलने का समय नहीं होता था। तो अर्जुन जब इशारा करते थे तो वो कैसे करते थे? जब राइट में जाना होता था तो भगवान के राइट साइड पे लात मारते थे, और लेफ्ट में जाना होता तो लेफ्ट साइड पे लात मारते थे, तो भगवान को पता चलता था कि मुझे किधर जाना है। तो भगवान ने इतने लातें खाई अपने भक्तों की, तो बोले कि इस तरह से लात वो भगवान खा रहे हैं, तो ये देख के मुझे रोना आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम ही एक व्यक्ति हो जिसने भगवद गीता को समझा है, और कोई समझ नहीं सकता। तो बताते कि देखो, भगवान के हाथ में चाबुक है, विप, और भगवान क्या कर रहे हैं कि जब घोड़ों को फाल भगाना रहता है तो चाबुक से आवाज करते ऐसा करके, मैं घोड़ों को मारते नहीं है। मैं भगवान का ये गुण है देखो कि भगवान घोड़ों को मार मार कर आगे नहीं भगा रहे, केवल डरा रहे हैं, जबकि भगवान को अधिकार है घोड़ों को मारने का और वो नहीं मार रहे, और एक भक्त है वो भगवान को लात मार रहा है। तो सोचो भगवान कितने कृपालु हैं, इतनी कृपा अहो बकीयम स्तन काल कूटम कहाँ मिलेगा, इतना इतना कृपा नहीं मिलेगा। पर भगवान कहते हैं कि भक्ति करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पूर्ण रूप से भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, तो हमको समझना चाहिए कि किस तरह से हम भगवान के बारे में जानेंगे, और इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण का क्या मतलब होता है? आकर्षयते इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमको भगवान के प्रति इतना आकर्षण तो नहीं है, दूसरी चीजों के प्रति हमारे को बहुत सारा आकर्षण है। तो आकर्षण क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो हम अभी चर्चा करेंगे, जो भी हमारे पास समय रहेगा, मुझे माफ करना अगर थोड़ा ओवरशूट हो जाए तो, क्योंकि मैं बैकग्राउंड दे रहा था और मैं नहीं चाहता कि इसको मैं दूसरी क्लास में आगे धकेलूं, तो दो तीन पॉइंट है वो डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो ये है कि भगवान को जानना है सबसे पहले। जैसे मेरे पिताजी मुझे बहुत साल पहले कहा करते थे तीन चीज, जब मैं इस्कॉन के बारे में अता पता भी नहीं था, वो कहते थे कि जानो तो अपने आप को, मानो तो प्रभु को, और करो तो सेवा। ये उनका मंत्र था, पता नहीं कहाँ से उन्होंने जुगाड़ किया था, लेकिन मैंने देखा ये सारी फिलोसफी इसी तीन चीज में फिट होती है कि जानो तो अपने आप को, मानो तो प्रभु को, और करो तो सेवा। तो अपने आप को जानना है, प्रभु को मानना है, तो उस मानने के लिए प्रभु कौन है वो पता चलने चाहिए हमारे को, भगवान कौन है, और भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। तो वो आकर्षण और ज्ञान जरूरी है। और कैसे आएगा, जैसे सोचो कि आज अगर आज हमारा क्लास चल रहा है और किसी ने एडवर्टाइजमेंट किया रहता, प्रभु जी ने एडवर्टाइजमेंट किया रहता कि आज हमारे प्रोग्राम के अंदर सचिन तेंदुलकर आएगा, और ऐसा बताया कि 507 बेबी शॉप बिल्डिंग में सचिन तेंदुलकर आ रहा है, तो आप क्या सोचते हो, अगर ये फैक्ट एडवर्टाइज किया गया है ऐसे, तो ये संख्या कितनी होगी? बहुत ज्यादा। बताते हैं कि अगर ये फैक्ट एडवर्टाइज किया कि सचिन तेंदुलकर आके आज क्लास देने वाला है या प्रोग्राम में भी आने वाला है, क्लास भले नहीं देवे तो भी भक्तों की संख्या बहुत होगी। एक बार अजमेरी प्रभु मेरे को बता रहे थे कि वो हीरो जैक्सन इधर आया था, तो जब आया तो कई लोग वो देख के बेहोश हो गए उसको, खाली देखने मात्र से। तो और अगर समझो आके आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर हमारे बीच में बैठा है, और ऑल्दो आई एम द मेन स्पीकर, आई हैव प्रिपेयर्ड द क्लास, लेकिन सबका ध्यान किधर होगा? तेंदुलकर की तरफ। सब लोग उसको देखेंगे और देखते देखते सोचेंगे, अरे देखो कितना अच्छा स्माइल दे रहा है वो, देखो अभी वो सो रहा है, देखो अभी उसको नींद आ रही है। तो इस तरह की भाव उत्पन्न होंगे हमारे शरीर में, मन में। क्यों क्यों सचिन तेंदुलकर के प्रति ऐसा होगा, कोई बता सकता है? आकर्षण है। आकर्षण क्यों है? उसको एक विशेष खेल में महारत हासिल की है उसने, मतलब he has displayed some skill, some potency. तो वो skill और वो potency देख के हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे सपोज सचिन तेंदुलकर आया हुआ है और अफ्रीका के जंगल से 25 लोगों को और हम लेके आए प्रोग्राम में बिठाए, और आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सचिन तेंदुलकर का, और बोल रहे हैं कि आज हमारे बीच में सचिन तेंदुलकर वहां से आके बैठे हैं, इन्होंने ये किया है वो किया है, तो बाकी लोगों का आकर्षण होगा, लेकिन जो 25 लोग हैं उनका आकर्षण नहीं होगा। और उनको अगर बताएंगे तो वो कंपैरिजन करेगा, देखेगा कि जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो और सचिन तेंदुलकर किस में मांस ज्यादा है, मैं उसको खाऊंगा, क्योंकि उसको कुछ अट्रैक्शन नहीं है। तो अट्रैक्शन कभी होता है? जब उसके बारे में ज्ञान होता है। आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कौन है, उसकी क्षमता क्या है, उसने किस प्रकार की अपनी पोटेंसी को डिस्प्ले किया है, किस तरह से वो खेला है, और ये सारी चीजें जब पता चलती है तब आकर्षण होता है। नहीं तो कितना भी इंट्रोड्यूस कर लो उसको, और जैसे स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना भी एक देयर इज अ कांसेप्ट एक्चुअली, कि जैसे अगर कोई किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है और कोई आके कहता है कि आज हमारे बीच फलाना फलाना प्रभु जी आए हैं, ये कई साल तक स्कूल में रहे थे, मतलब कई बार फेल हुए हैं, और कई बार 10वीं की उन्होंने एग्जाम दिए, और उस एग्जाम देने के बाद जब जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो आके हरे कृष्ण आंदोलन में संलग्नित हो गए, और हरे कृष्ण आंदोलन में आने के बाद भी कई लोगों के साथ उनका अच्छा पट नहीं रहा है, तो वो अभी जाने की सोच रहे हैं, लेकिन जाने के पहले वो एक यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आए हम सब लोगों को ऑन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो कितने लोग बैठेंगे उस लेक्चर में सोचो, लोग बोलेंगे काम करता हूँ एक घंटे के बाद आता हूँ जब प्रसाद उनका टाइम होगा चला जाएगा। तो इसके लिए तो जो बचा खुचा जो इंटरेस्ट होगा वो भी लोगों का खत्म हो जाएगा। या फिर अगर कोई आके इस तरह से इंट्रोड्यूस करे कि आज हमारे बीच में फलाना फलाना प्रभु जी आए हैं, उनका रंग गोरा है, 60 किलो के हैं, उनके आंखों का कलर ब्राउन है ना, इस तरह की अगर इंट्रोडक्शन देंगे तो उसका क्या फायदा। तो जब इंट्रोडक्शन भी देते हैं तो पता होना चाहिए कि भाई किस चीज का किस तरह से देते हैं, क्योंकि इस तरह का इंट्रोडक्शन ये भी गलत नहीं है ना, उनका नाम ये है, वो दिल्ली से हैं, कलकत्ते से हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब ठीक है। तो इस तरह का इंट्रोडक्शन या तो अस्पताल में देते हैं या पुलिस स्टेशन में देते हैं। एक बार चौपाटी के भक्तों ने एक स्टॉल लगाया था कुंभ मेले में, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर का स्टॉल। तो वहां पर आकर लोग प्रश्न पूछने लगे, एक व्यक्ति आके पूछा, अरे प्रभु जी मैं गंगा में स्नान कर रहा था, मेरा बटुआ खो गया, आप बताएंगे कहाँ मिलेगा। तो उसने कहा, अरे यहाँ पर ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, यहाँ ऐसे प्रश्न का उत्तर मिलता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस तरह के प्रश्न पूछो। तो बोला अच्छा अच्छा, तो कहाँ पे क्या प्रश्न पूछना है वो भी बरोबर जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। अब यही प्रश्न आप पुलिस स्टेशन में जाके नहीं पूछ सकते, पुलिस स्टेशन में जाओ और पूछो बटवा खो गया है, लेकिन जाके पूछते पुलिस बताओ मैं कौन हूँ, वो बोलेगा अंदर चल मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, सीधा अंदर ले जाएगा, बंद करेगा पहले। तो कौन सा प्रश्न कहाँ पूछना है वो भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इतना ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर अप्रोच करना है, कौन सा प्रश्न पूछना है। और विदाउट नॉलेज नथिंग कैन हैपन। जैसे अगर एक घर को आग लग गई है और फोन कर रहे हैं हम कहाँ पर, ग्रोसरी में, क्योंकि एक ही नंबर मालूम है हमको, ग्रोसरी या लॉन्ड्री का, ये दो नंबर पता होता है अबू धाबी में। तो ग्रोसरी में फोन कर रहे हैं और चिल्ला रहे, अरे आग 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 लगी, आग लगी, आग लगी है। तो ग्रोसरी वाले कहा मैं क्या करूँ, कैरोसिन भेजूँ क्या, तो उसके पास वही चीज अवेलेबल है। तो अगर आग लगी है तो किधर फोन करने का है, फायर ब्रिगेड में ना। और नहीं तो कार खराब हो गई है, बीच रस्ते में बंद पड़ गई है और होटल में फोन कर रहे हैं, तो होटल वाला बोलेगा मैं क्या करूं, दूध भेजूं क्या, पेट्रोल चाहिए, लेकिन वो दूध ही भेज सकता है क्योंकि उसके पास वही मिलता है। तो पता होना चाहिए कहाँ पर क्या मिलता है। तो अगर भक्ति भी करनी है तो पता होना चाहिए कि भगवान के पास जाना है। भक्ति करने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है, क्या, पहला भगवान, दूसरा भक्त और तीसरा भक्ति प्रोसेस, ये तीन चीज। तो पता होना चाहिए कि अगर मेरे को, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक जो आएगा बहुत बहुत जबरदस्त श्लोक है, 20वां श्लोक जो है, इसमें भगवान कहते हैं कामस्ते स्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो किसको कहाँ पर जाना है उतना कम से कम हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि अगर मेरी कार खराब हुई तो मैकेनिक का नंबर ढूंढना चाहिए, वहां पर जाना चाहिए। अगर मेरे को ये प्रश्न पूछना है, जैसे एक बार प्रभुपाद जी MIT में लेक्चर दे रहे थे, Massachusetts Institute of Technology, और एक लड़का खड़ा हो गया और प्रभुपाद जी को पूछा कि आपके ये सिर के ऊपर क्या मार्क है, ये क्या आपने लगा के रखा है। तो प्रभुपाद जी ने उसे काउंटर क्वेश्चन किया, बोला ये तुमने गले में क्या पहन के रखा है। तो देखने लगा अपने टाई को, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, जवाब देने आया नहीं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, जब साधु आया है तो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो, ये सब क्वेश्चन कोई काम के नहीं है कि कौन से वस्त्र धारण किए है, सिर पे क्या लगा के रखा है, ये पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे क्यों इतने दुख मिल रहे हैं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मैं इस दुनिया से वापस कैसे जा सकता हूँ। दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। तो ये जब हम प्रश्न पूछेंगे तब हम सही उसका उत्तर पाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जरूरी है, नहीं तो कोई सेंटिमेंट व्यक्ति आ गया है, यू नो गणेश भी वो बराबर है एक लेवल पे, कृष्ण भी एक लेवल पर वो भी है, कि सारे के सारा जो नदी होती है वो कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है, तो सब भगवान एक है, सारे रास्ते भगवान के पास जाते हैं, नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और प्रभुपाद जी इसके अगेंस्ट में बहुत बोले हैं, ऐसा कोई और दूसरा आचार्य ने इतना कुछ कहा नहीं है कि सब, हाँ भाई कृष्ण भी बराबर है, राम भी बराबर है, ये भी बराबर है, गणेश भी है, दुर्गा भी है, ये भी है, वो भी है, साईं बाबा भी बराबर है, और हमारा नो वो भी है, सब है नो। एक व्यक्ति है हमारा, एक डॉक्टर है, उसने अपने आप को भगवान घोषित किया बॉम्बे में, और वो कहता है, मराठी है उसका नाम है, बोलता है मीच न, बोलता है मीच तो कृष्णा, मीच तो साई, मीच तो जगन्नाथ, आणि मी मराठी पण आहे। वो इस तरह से अपने आप का प्रचार करता है, और कई लोग उसकी इधर लाइन लगाते हैं, सिगरेट पीता है और रखता है, आधी सिगरेट पी के उसका महा लेने के लिए लोग उसकी लाइन में खड़े रहते हैं। तो इस तरह से तो हमको समझना चाहिए कि भाई ना फंसे नहीं, कम से कम सही जगह पे आ गए। तो इसके लिए उतना ज्ञान हमें जरूरी है, और भगवान कहते हैं कि इसलिए इतना ज्ञान एक्चुअली कम से कम हमारे को रखना चाहिए कि हम न जान पाए। अभी जैसा सोचो कि अगर भारत और पाकिस्तान में, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखो तो कई सारा न्यूज़पेपर के अंदर इतना बॉम्बार्डमेंट है, नो इतना इसका फोटोग्राफ, उसका फोटोग्राफ, कपिल देव, गावस्कर, तेंदुलकर, ये वो, पता नहीं कितने सारे फोटो भेजते हैं। और एक बार मैं नवभारत टाइम्स पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने लिखा था पाक रमण, तो गौरांग प्रभु बता रहे थे कि मैंने सुना था राधा रमण, ये पाक रमण किधर से आ गया। पाक रमण मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, तो उसको लोग पाक रमण नाम दिया कि खेलो। तो सोचो कि इतना बॉम्बार्डमेंट है, अगर न्यूज़पेपर उठा के देखो तो इतना सारा उनके क्रिकेट के बारे में लिखा हुआ है, मैगजीन देखो उसमें भी लिखा हुआ है, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, जिधर देखो उधर उसके बारे में लिखा हुआ है। तो कई बार जिसको इंटरेस्ट नहीं होता वो भी सोचता है यार इतना सारा क्या प्रचार कर रहे हैं लोग, ना थोड़ा मैं भी देखता हूँ। ये है इंडीड, मेरे घर पे भगवान की दया से आज तक बचपन से लेकर अब तक कभी टीवी आया नहीं, एक महीने के लिए आया था छुट्टी में, वो भी पिताजी ने निकाल दिया था। पर जब मैं कॉलेज खत्म करके जब आर्टिकलशिप कर रहा था, तब एक बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, और बहुत मेरे ऑफिस के सारे लोग 24 घंटे वही बातें करते थे, और मेरे को भगवान के दया से क्रिकेट का सी भी नहीं मालूम, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट पैदा हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं, क्योंकि यही बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर मैंने एक दिन बैठ के मैच देखा था मेरे दोस्त के साथ कि भाई अरे मेरे को भी देखने दे यार, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ बोल तो पाऊंगा। तो इतना बॉम्बार्डमेंट हो रहा है तो वो सोच के हम लोग भी अट्रैक्ट हो जाता है वहां पे। आप सोचो कि कोई ना भारत के कोई गांव में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट हो रहा है, और एक क्षण के लिए खाली ऐसा सोचो, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, आप सोचो टेलीविजन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, रेडियो नहीं है, मैगजीन नहीं है, और न्यूज़पेपर भी नहीं है, मतलब मैच होने के बाद कोई पोस्ट रिपोर्टिंग भी नहीं है, अभी तो लाइव हमको देखने मिलता है, लेकिन ये सब भी चीज़ नहीं है, और किसी को खबर ही नहीं है कि कोई मैच हो रहा है, कितने लोग आकर्षित होंगे?
किसी को पता नहीं चला, जो देखा उसको पता चला।
आकर्षित होंगे लोग मैच के बारे में नहीं, क्यों? क्योंकि वो मीडिया कट हो गया वहां पे। तो उसी तरह कि अगर किसी के बारे में आकर्षण तब पैदा नहीं होगा जब उसके बारे में ज्ञान ही नहीं होगा, तो हमको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो भगवान के प्रति आकर्षण कहाँ से होगा? नो, कई लोग है जो भगवान के बारे में इतना कुछ कहते हैं लेकिन हमको लगता है यार ये क्या कह रहा है ना, मेरे को तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है, मतलब जैसा का जैसा ही हूँ। एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जो मुझे बरोबर याद नहीं, लेकिन उसका ट्रांसलेशन ऐसा है, तारुण्य अमृत पारावार, तो भगवान के तारुण्य का वर्णन वहां पे हुआ है कि वो एक भौरे की तरह है, और जब वो भौरा चलता है तो गोपियों का मन, नारियर मन तृणपात, टाटे के डुबाए ना उद्गम। वो बस बताते कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि नारियों का जो मन है वो तृण के भाती है, कि जब चक्रवात आता है, जब हवा आती है, तो क्या होता है, जो तृण होता है, जो छोटा छोटा कागज पत्ते वो सब होते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं। तो नारियों का मन मतलब गोपियों का मन ऐसा था कि भगवान का जब बंसी का भौरा चक्र चलता है तो उनके मन उड़ गए, लेकिन जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े वो उधर ही रहते हैं, उड़ते नहीं है। तो बताते हैं उनका मन उड़ गया है लेकिन हमारा मन उधर ही बैठा हुआ, क्योंकि पत्थर का है, पत्थर रहेगा तो उड़ेगा नहीं ना। तो इसके लिए हमको भी वैसा मन होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए हमको कि भगवान कौन है, भगवान की क्या शक्तियां हैं। जब इस बारे में हमको पता चलेगा कि भगवान के ऐश्वर्य क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, हमको पता चलेगा कि अच्छा सचिन तेंदुलकर फेमस है लेकिन कितना फेमस है, कुछ लोग ही उसको जानते हैं, लेकिन भगवान का फेम कितना है बताओ, भगवान को कौन नहीं जानता। अभी कई जन आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि अरे कई लोग ऐसे जो कृष्ण को नहीं जानते लेकिन दूसरे किसी को जानते हैं, पर उतने सेक्शन से हम नहीं जा सकते। जैसे जो पूरा का पूरा जगत है आध्यात्मिक और भौतिक, एक चौथाई भाग सिर्फ भौतिक जगत है और तीन चौथाई भाग आध्यात्मिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत में सभी भगवान को जानते हैं। असितो देवलो व्यास, सब लोग वो भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने पढ़ा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, वो सब जानते। तो सारे के सारे लोग वो सब भगवान के पास आकर के झुक रहे हैं। और इंडिया बताते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी जो थे उनकी इतनी शक्ति थी कि सारे के सारे जो देवतागण थे अपना जाजल्यमान मुकुट लाके उनके पैरों में रखते थे। नहीं, मेरे को श्लोक बरोबर याद नहीं है लेकिन उसमें कहते हैं एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में जिसमें कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र की इतनी शक्ति थी कि सारे के सारे देवतागण अपना मुकुट वगैरह लाके उनके चरणों में रखते थे। ब्रह्मा जी, सारे के सारे लोग आके, इंद्रदेव, चंद्र, वरुण जो भी थे वो, और वो भगवान रामचंद्र जी दाशेषु अनन्य शरणेषु यदात्मसत्त्वं यो रोचयत सह मृगे स्वयमेश्वराणां श्रीमद् किरीट तट पीड़ित पाद पीठ। बताते कि वो उसके पाद पीठ मतलब उसके पैरों में लाके रखते थे और वो भगवान रामचंद्र वो क्या कर रहे हैं, वो बंदरों के साथ घूम रहे हैं। यो रोचयत सह मृगे, मृगे मतलब बंदर, स्वयं ईश्वराणाम ईश्वर होने के बाद भी वो बंदरों के साथ घूम रहे हैं। अब आप सोचो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका समाज के अंदर बहुत नाम है, बहुत प्रतिष्ठा है, वो बंदरों के साथ घूमना पसंद करेगा क्या? जैसे समझो यहाँ के अपने शेख जो है वो कोई मीटिंग में जा रहे हैं, एमिरेट्स पैलेस के अंदर मीटिंग फिक्स किया है और उस मीटिंग के अंदर सारे के सारे डेलीगेट आए टाई कोट सूट सब पहन के और उसके अंदर वो शेख जा रहे हैं और साथ में बंदर है, बंदर का हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं मीटिंग में, कोई देख के बोलेगा अरे ये कौन है? बोले अरे ये मेरा एसोसिएट है। ये क्या करेगा? कंसल्टेंसी देगा, मेरे को कंसल्टेंसी देगा, ऐसा कोई करेगा? लोग उधर ही छोड़ के बोलेंगे अरे चलो यार इसके साथ बिजनेस नहीं करना, पता नहीं कैसा व्यक्ति है बंदरों को लेके घूम रहा है। लेकिन भगवान वो क्या कर रहे हैं, बंदरों के साथ घूम रहे हैं। यो रोचित सहमृग स्वयं ईश्वराणा, और वो क्या कर रहे हैं, बंदरों से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, हनुमान जी को पूछ रहे हैं अच्छा हनुमान जी अभी सीता माता को कहाँ ढूंढना चाहिए, रावण पे विजय कैसे प्राप्त करनी चाहिए, इस समुद्र को कैसे पार करना चाहिए, जामवंत से पूछ रहे हैं, सुग्रीव से पूछ रहे हैं, अंगद से पूछ रहे हैं कि बताओ क्या करना चाहिए। तो बताते हैं कि भगवान इतनी करुणा है तो वो पूछ रहे हैं और उनके साथ घूम रहे हैं। तो भगवान उनके इतने कृतार्थ हो गए थे कि जब उन्होंने कहा कि इस लीला के अंदर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ, धन का अभाव है, व्यवस्थाएं नहीं है, आपको खिला पिला नहीं सकता बरोबर से, लेकिन अगले मेरे अवतार के अंदर आ जाना तो जितनी भी बची खुची जो कमियां रह गई है वो मैं पूरी करूंगा। तो ये जानकर यदा कदा भगवान दामोदर लीला के अंदर बंदरों को माखन खिलाते थे कि खाओ अपने हाथों से, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि कितना भाग्य है उनका कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनकी एक छवि लेने के लिए योगी महात्मागण और बड़े बड़े देवतागण सालों सालों हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते लेकिन मिलता नहीं है, लेकिन वो अपने बंदरों को अपने हाथों से माखन खिला रहे। इसलिए वे कहते हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बताते कि पूर्ण ब्रह्म सनातन जो है वो यन मित्रम, वो मित्र बने हुए बंदरों के और उनको खिला रहे हैं। सोचो भगवान की कितनी, तो हमको ये सब बात पता होनी चाहिए तभी भगवान के प्रति आकर्षण होगा कि भगवान इतने बड़े हैं लेकिन फिर भी देखो बंदरों को एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो अगर ये चीज हमको पता चलेगी तो हमको भी थोड़ी उससे एक आशा की किरण मिलेगी कि अरे नहीं मेरा भी कुछ चांस है, नहीं तो पता चला कि भगवान के सामने रेवरेंस में हाथ पकड़ के पुरुषोक्त प्रेयर बोल रहे, इतनी सारी प्रेयर बोल दी लेकिन कुछ समझ में मेरे को भी नहीं आया और कुछ असर भी नहीं हुआ। तो हमको पता चलना चाहिए कि भगवान कौन है, उनकी क्या क्षमता है, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं और भक्तों के लिए कहाँ तक वो चले जाते हैं और क्या क्या नहीं करते। तो ये सब जब चीज हमको पता होगी, और इतना छोटा सा, बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बहुत पंडित बनने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं बदमाशी करने की आवश्यकता नहीं है, खाली इतना जान लो कृष्ण भगवान है और अल्टीमेटली हमें भगवान की शरण में जाना है। अगर ये चीज हमारी समझ में आ गई तो हमको और जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दो चीज, भगवान कौन है और भगवान से किस तरह प्रेम करना है। अगर ये दो चीज का ज्ञान हो गया तो सारे लिटरेचर की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली एक बार भगवान एक्चुअली 15वें अध्याय में कहते हैं, आपको श्लोक पता रहेगा, बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं 15.15, किसी को याद है भगवान क्या कहते हैं 15.15, किसी को याद है? करेक्ट बोलेंगे प्रभु जी, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेषु अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में बैठा हूँ और मुझी से स्मृति विस्मृति और ज्ञान आता है, सभी वेदों में केवल मैं जानने लायक हूँ, वेदों का रचयिता भी मैं हूँ। और तो बताते हैं कि वेदों का जो तात्पर्य है, जो जानने लायक कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर ये छोटी सी बात हमारे भेजे में घुस जावे किसी तरह येन केन प्रकारेण कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारा जगत उनके ऊपर आश्रित है और मैं भी उन पर आश्रित होना चाहता हूँ, अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए तो हम धीरे धीरे भक्ति के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और जब भक्ति की शुरुआत होगी तो भगवान खुद हमारे पास आते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम, जो जिस तरह जो भाव लेके मेरे पास आता है मैं उसी तरह उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ और उसको देता हूँ। अगर मैं भगवान के पास ये जान के आऊंगा कि अरे भगवान मुझे आपके पास आना है, मुझे ज्ञान नहीं है, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, वो वाला कौन सा श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भगवान कहते हैं कि मैं देता हूँ तुमको वो ज्ञान, अंदर से प्रकाशित करता हूँ कि जो आप मेरे पास आ सको। लेकिन अगर हम भगवान से विमुख होने की कोशिश करेंगे तो एक कदम विमुख होंगे तो भगवान 10 कदम हमारे से दूर चले जाएंगे, लेकिन अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम बढ़ा के हमारे पास आएंगे। तो भगवान है और भगवान आते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं आते हैं। अभी हमारे पास समय नहीं है एक्चुअली, मैंने कुछ और पॉइंट लिखे थे कहने के लिए, बट माफ करना मेरे को। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कई बार हम लोग ज्ञानी के रूप में भगवान के पास नहीं आए, आर्थ के रूप में भगवान के पास आए और दुखी होके आए भगवान के पास, और दुखी होने के बाद भी भगवान हमको वो बुद्धि देते हैं कि हम उनके पास थोड़ी बहुत ज्ञान से समझ सके, पहुंच सके, और भगवान आएंगे उसकी एक झलक देखने की कोशिश करेंगे सिर्फ 10 मिनट में। तो कथा है गजेंद्र की, कि किस तरह से गजेंद्र एक आर्थ के रूप में भगवान के पास आया और वो भगवान ने उसको ज्ञान दिया, अंदर से इंस्पायर किया और किस तरह उसके भगवान की शरण ली। तो गजेंद्र की स्टोरी आप सबको मालूम है कि गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न थे पहले के जमाने में, तो वो त्रिकुट पर्वत में ऋतुमत जो नदी है उसमें गए थे नहाने के लिए, और जब जल क्रीड़ा कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ तो मगरमच्छ ने आके उनका पैर पकड़ लिया और फिर 1000 वर्षों तक उनका युद्ध चलते रहा। और वो युद्ध चलने पे गजेंद्र ने बहुत कोशिश की अपने खुद के बल पे कि मैं एक्चुअली बहुत विविड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि गजेंद्र जब चलता था तो त्रिकुट पर्वत जिसकी 3 चोटियां एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की, वो हिलने लगती थी। और जो त्रिकुट पर्वत है वो क्षीर सागर के तट पर है, क्षीर सागर मतलब दूध, दूध का सागर। तो कई बार ऐसा होता है, ये सब जब वर्णन हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में तो थोड़ा डाउट आता है दिमाग में, सोचते हैं अरे दूध का भी सागर होता है क्या। एक बार एक व्यक्ति आया एक ब्रह्मचारी के पास और कहने लगा कि प्रभु जी बताओ दूध का भी सागर होता है क्या, कहीं वो दूध फट गया तो और समुद्र मंथन हुआ उसके अंदर थोड़ा अगर दही डाल दिया तो क्या उसका लस्सी नहीं बन जाएगा। तो इस तरह के सब ख्यालात आते हैं क्योंकि हमारे को ज्ञान नहीं है उतना। तो प्रभुपाद उसको कहते हैं डॉक्टर फ्रॉग फिलोसॉफी, कि कुएं का मेंढक है उसको उतना ही पता रहेगा। एनीवे, तो वो जब हाथी जब चलता था गजेंद्र, तो हाथी की चाल वैसे ही मस्तानी होती है, बड़े मस्ती से चलता है वो, और गजेंद्र इतना पावरफुल था कि पूरा का पूरा पर्वत हिलता था और सारे के सारे जो दूसरे जानवर थे वो भाग जाते थे उसके डर के मारे। तो इतना पावरफुल होने के बाद भी एक छोटे से मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया और उसका कुछ भी नहीं कर सका। और प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि वो गलत जगह पर था, क्योंकि थल पर मतलब जमीन पर उसका बहुत पावर था लेकिन जल में उसका बिल्कुल पावर नहीं था, उसके अंदर मगरमच्छ पावरफुल हो रहा था। तो हमको समझना चाहिए कि हमारा क्या सिचुएशन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हम लोग बहुत पावरफुल है लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आके हम लोग फिनिश हो गए खलास। तो उसका जब पैर पकड़ लिया तो 1000 वर्षों तक वो लड़ाई करता रहा, उसकी फैमिली ने उसको बचाने का प्रयास किया, बड़ी स्टोरी में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। जब उसको कहीं से कुछ मदद नहीं मिली तो बड़ा दुखी हो गया और दुखी होके उसने प्रीवियस अपने जो पहले के जमाने में जो भक्ति की थी वो भक्ति करके उसने भगवान को याद किया, और उसे ये नहीं मालूम था कि भगवान कौन है। अगर गजेंद्र की आप प्रार्थनाएं पढ़ोगे तो थोड़ा इम्पर्सनलिज्म के जैसे है, क्योंकि उसने भगवान विष्णु का कृष्ण का कहीं नाम नहीं लिया, उसने ये कहा था कि हे सुप्रीम, जो भी है सुप्रीम हो प्लीज आ जाओ ना, मेरी सहायता करो। तो ये बहुत जरूरी है कि पता लगाना कि भाई सुप्रीम के पास जाना है, नहीं तो छोटे छोटे लोगों के पास जाके लंबा रास्ता नहीं जाना है, शॉर्टकट एलिवेटर के साथ सीधा ऊपर पहुंचना है, भगवान के पास पहुंचना है। तो उसे हालांकि ये पता नहीं था कि भगवान कौन है, उनका क्या नाम है, लेकिन उसने इस तरह से प्रार्थनाएं की थी, इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं दी है। और आचार्यों ने इतना विश्लेषण करके एक एक प्रार्थना के ऊपर इतने सारे तात्पर्य लिखे हैं कि अगर गजेंद्र मोक्ष जो है, गजेंद्र कल्याण, इसकी एक प्रार्थना भी हमारे भेजे में घुस जाए, हम उसको समझ ले और अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, इतनी है। तो इतनी सारी उन्होंने प्रार्थनाएं की और एक प्रार्थना में वो कहते हैं न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपो गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय समाय तान्यन काल मृक्षति। तो इस तरह से काफी स्तुति उन्होंने की है और एक स्तुति वो भगवान से करते हैं जिसके अंदर उनका और भगवान का, सोचो आप इमेजिन करो कि वार्तालाप हो रहा है। श्लोक नंबर मेरे को याद नहीं है गुरु जी, पर आपको बता दूंगा मैं, ये 8.3.17 ऐसा कुछ है अभी जो श्लोक में बोल रहा हूँ। तो उसमें ये एक श्लोक वो पढ़ते हैं भगवान के सामने मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनु ब्रह्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते ब्रहते नमस्ते। तो आप एक मिनट के लिए ऐसा सोच लो कि गजेंद्र में और भगवान में वार्तालाप हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, और वो क्या डायलॉग हो रहा है और वो किस तरह से डायलॉग करता है। और बताते हैं कि भगवान का भक्त बहुत इंटेलिजेंट होता है और भगवान उसको इंटेलिजेंट दे देते हैं, इसका प्रमाण यहाँ पर गजेंद्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आर्थ के रूप में वो आते हैं और भगवान से वो कहते हैं कि क्योंकि मैं पशु क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण किया था, आपकी निश्चय ही मुझे संकट में स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देवधारी जीवों के हृदय में स्थित है। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात है और आप असीम है। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो गजेंद्र भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, आप मुझे मुक्त कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा बता, मैं तुझे मुक्त क्यों करूं। ये दोनों में वार्तालाप हो रहा है। तो भगवान कहते हैं बता तुझे मुक्त क्यों करूं। तो गजेंद्र भगवान से कहते हैं कि आप मुझे मुक्त इसलिए करो कि आप मुक्ताय हो, आप फ्री हो। तो बताते हैं कि जैसे दो बंधे हुए व्यक्ति एक दूसरे को छुड़वा नहीं सकते, लेकिन एक छुटा हुआ व्यक्ति दूसरे को छुड़वा सकता है कि नहीं। दो कैदी बंधित है और एक कैदी दूसरे से कहता है कि यार आज मैं तेरे को छुड़ाऊंगा, पहले खुद को तो छुड़ा। तो बताते हैं कि जो बद्ध व्यक्ति है वो छुड़ा नहीं सकता। तो हम बद्ध अवस्था में है लेकिन भगवान मुक्त अवस्था में है। तो बताते हैं क्योंकि आप मुक्त हो आप मेरे को छुड़ा सकते हो। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, क्या तेरा उद्धार करने के लिए इतना क्वालिटी काफी है क्या कि मैं मुक्त हूं और तू बद्ध है तो तेरे को छुड़ा दूंगा, इतना चलेगा क्या। एक्चुअली इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक मुक्त व्यक्ति एक बद्ध व्यक्ति को छुड़ा सकता है, एक बद्ध व्यक्ति बद्ध, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है कि वो बद्ध होने के बाद भी लोगों को मुक्त कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल दामोदर लीला में है कि दामोदर लीला में भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने बांध दिया और फिर भी उन्होंने किसको मुक्त किया, नल कुबेर और मणिग्रीव को। भगवान बंधे हुए थे और नल कुबेर और मणिग्रीव उनको उन्होंने मुक्त कर दिया, वो भी बंधे हुए थे झाड़ के रूप में। और बाद में नल कुबेर ने और मणिग्रीव ने भगवान से कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है भगवान कि हम अभी मुक्त हो गए और आप बंधे हुए हैं, दिल में अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। तो भगवान ने कहा ठीक है करो, छुड़ा सकते हो मेरे को छुड़ाओ। उन्होंने कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं सके। तो बताते हैं कि भगवान का ये जो बंधन है, जो प्रेम का बंधन है, जिसको प्रेम के रज्जू से माता यशोदा ने बांध के रखा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये प्रेम का बंधन है जो नहीं टूटता है। बलराम जी ने भी कोशिश की थी कि जब भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने बांध दिया तो सारे के सारे उनके सखा आ गए, बोले अरे हमारा लीडर तो बंध गया अभी क्या कर सकते हैं। तो फिर कृष्ण ने कहा यार मेरे को छुड़ाओ नहीं तो हम लोग आगे काम कैसे करेंगे। तो बलराम जी ने कहा कि लगता है माता यशोदा को आपके बारे में पता नहीं है, मैं जाके बताता हूँ माता को कि आप कौन हो और तब वो आपको छोड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है प्रयत्न करके देखो। तो बलराम जी गए और माता यशोदा को बोलने लगे कि मैया तुम्हें पता है कृष्ण कौन है। तो मैया ने कहा बता कौन है। बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। बोले भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान सभी कारणों के कारण है, सभी चीज उनसे आती है, ऐसा वैसा करके माता बड़े बड़े आंखों से देखने लगी क्या बोल रहा है मेरा लाल आज। तो बलराम जी को बोले अच्छा और तू कौन है। तो बोला अरे मैं बलराम हूँ, मैं भगवान का पहला अंश अवतार हूँ, सारे के सारे दूसरे अवतार मुझे से आते हैं, अनिरुद्ध प्रद्युम्न शंकरषण वासुदेव सभी मुझसे आते हैं, मैं ओरिजिनल शंकरषण हूँ, सारे के सारे अवतार मुझसे जन्म लेते हैं। तो मैया तो चिढ़ गई, बोले अच्छा क्या सारे अवतार को मेरे घर में जन्म लेना था क्या, आज इधर से। बोला नहीं तो तेरे को ही बांध दूंगी। तो जाके बलराम जी बोलने लगे भगवान से यार प्रयत्न किया सफलता हाथ नहीं लगी। तो बोले कोई बात नहीं, कम से कम प्रयास तो किया ना, मैं यही चाहता हूँ। तो वो बंधन को बलराम जी भी नहीं तोड़ पाए, मणिग्रीव और नलकुबेर क्या तोड़ेंगे। तो बताते हैं कि भगवान बद्ध होने के बाद भी मुक्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बद्ध अवस्था में किसी और को मुक्त नहीं कर सकते। तो भगवान पूछ रहे क्या इतना काफी है क्या, जैसे जेलर मुक्त होता है और कैदी बद्ध होते हैं तो इतना काफी है क्या कि जेलर खाली बैठा है तो कोई कैदी बोलेगा यार तुम तो मुक्त है मैं बंधा हूं तो मेरे को छोड़ दो। नहीं, उसमें क्या होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। जेलर में करुणा होनी चाहिए तभी उसको छोड़ सकता है। तो आगे गजेंद्र बोल रहा है कि आप मुक्ता है नहीं हो, भगवान भूरी करुणा है कि आप में बहुत सारी करुणा भरी हुई है और इस करुणा की वजह से मेरा यह विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि आप मुझे मुक्त करोगे। तो बताते हैं कि भगवान की करुणा का कई कई उदाहरण है, हम उसमें नहीं जाएंगे डीप। जैसे एक बार वो बरसाना से ब्रजराज प्रभु आए थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे, बोले कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो वो सबके पास गई लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर पाए, तो जब भगवान को उन्होंने पुकारा और उन्होंने भगवान का नाम लिया और सिर्फ गो कहा, गोविंद भी नहीं कहा पूरा, और भगवान तुरंत वहां पहुंच गए। इस गजेंद्र लीला के अंदर भी हम देखेंगे कि भगवान जब गजेंद्र को मुक्त करने के लिए आए तो दौड़ के हुए आए और गरुड़ की जो स्पीड थी यू नो वो भी कम पड़ गई एक्चुअली, तो भगवान ने कहा यार जरा एक्सेलेटर जोर से दबा, यू नो जल्दी पहुंचना है, और गरुड़ हाँफने लगे वहां पर, तो भगवान ने बोला अरे क्या करूं, तो उन्होंने गरुड़ को अपने कंधे पे उठाया और हवा करने लगे और खुद भागे, बोले मेरे भक्त प्रॉब्लम में है, मैं उधर तुरंत मेरे को पहुंचना है। तो इतना करुणा लेके भगवान आए, तो भगवान की करुणा का तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो बताते हैं भगवान आप में भूरी करुणा है और इसके लिए मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आप मुझे मुक्त करोगे। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं भूरी करुणा हूँ, लेकिन समझो अगर मुझे तुझे मुक्त करने में आलस आ गया तो मैं तो बहुत दूर रहता हूँ वैकुंठ के अंदर गोलोक में रहता हूँ, तुझे कैसे आके मुक्त करूँ। तो गजेंद्र कहता है नहीं भगवान आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ये जो जड़ता है, ये जो आलस्य है, ये सब हमारे अंदर है, आपके अंदर नहीं है। क्योंकि हमारे में बहुत सारा आलस्य होता है, कभी उठने के लिए आलस्य होता है, जब करने के लिए आलस्य होता है, प्रोग्राम में आने के लिए आलस्य होता है, और इतने सारे आलस्य में हम लोग फंसे हुए रहते हैं। लेकिन वो भगवान को कहते हैं कि आप कौन हो, अललाय हो, अललाय मतलब जिसमें आलस्य बिल्कुल नहीं है, इसलिए भगवान को कहते हैं कि भगवान इज अलर्ट एवरी सिंगल टाइम। क्योंकि अगर भगवान आलस करेंगे तो सूरज के बदले चंद्र उगने लगेगा और पृथ्वी का पता नहीं नो किधर से किधर चली जाएगी, तो भगवान हमेशा अलर्ट रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। तो बताते हैं कि आप में आलस्य हो ही नहीं सकता भगवान, आप अललाय हो, इसलिए वो कहते हैं कि मुक्ताय भूरी करुणाय नमो ललाय। तो वो आगे कहते हैं कि लेकिन मैं इतना दूर रहता हूँ कैसे आके तुमको बचाऊं। तो कहते हैं कि नहीं आप दूर नहीं हो, आप सबसे करीब हो, किधर हो आप, हृदय के अंदर हो, आप हृदय के अंदर बैठे हो इसलिए तुरंत आ जाओगे, इतना दूर से आपको आने की जरूरत नहीं है। स्वांसेन सर्व तनु भृन मनसी प्रतीत, कि आप एकदम दिल के अंदर बैठे हुए हो और इसके लिए आप तुरंत आ जाओगे। तो मेरा ये विश्वास है कि जब मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ तो तुमको आने में 1000 वर्ष नहीं लगेंगे, आप तुरंत आ जाओगे और इसके लिए आप आ जाओ। तो देखो एक एक आर्ग्यूमेंट भगवान दे रहे हैं और गजेंद्र उसको किस तरह से भगवान के आर्ग्यूमेंट को ना उसका उत्तर दे रहा है। कहते हैं कि नहीं आप क्योंकि हृदय में बैठे हो ना, तीन तरह के भगवान ना बताते हैं कि तीन तरह के लोग होते हैं, एक मित्र बंधु और सुहृद। तो भगवान अपने आप को सुहृद कहते हैं, मित्र मतलब होता है ना सोशल फ्रेंड, बंधु मतलब थोड़ा क्लोज फ्रेंड, और सुहृद मतलब हार्ट टू हार्ट फ्रेंड। तो भगवान क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवामाम शांति मृक्षति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। भगवान कहते हैं कि मैं किधर बैठा हूँ, मैं लोगों के हृदय के अंदर बैठा हूँ, तो बोला तुरंत आ जाओगे। तो कहते हैं कि ठीक है मैं आ भी जाऊं लेकिन मेरे में इतनी ताकत है क्या कि मैं तेरे को बचा पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि भगवते आप कौन हो, आप भगवान हो, आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप जो कोई भी हो लेकिन आप भगवते हो, और आप भगवते हो बृहते नमस्ते, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, और इसके लिए मेरी ये यू नो पूर्ण मेरा विश्वास है कि आप भगवान होने के कारण आप आके तुरंत मेरे को ना बचा पाओगे, और इसके लिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप आ जाओ और आप मेरे को बचाओ। तो इस तरह से एक आर्क के रूप में गजेंद्र आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, और एक चीज उन्होंने जान ली कि मुझे ये नहीं मालूम कि आप कौन हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सुप्रीम हो, और इसलिए मैं आपके शरण ग्रहण कर रहा हूं और आपके शरण में आ रहा हूं, इसलिए भगवान मेरी ये प्रार्थना है कि आप आके मेरे मुझे बचाओ। तो इतना अगर ज्ञान हमारे में थोड़ा सा आ जाएगा तो हमारे ना भगवान के पास जाने के लिए हमारा टिकट पक्का मिल जाएगा। और इस गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र कल्याण में कई सारे तथ्य हैं जो प्रभुपाद जी बताते हैं, एक दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा। वो कहते हैं कि गजेंद्र का जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, बहुत एंजॉयमेंट कर रहा था, लेकिन पानी में गया और मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो कई बार हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, अबू धाबी में आ गए हैं, अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छे कार में घूम रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन माया देवी ने बहुत सारे मगरमच्छ छोड़ के रखे हैं। कौन सा मगरमच्छ कभी आके दबोचेगा हमको मालूम नहीं है। इतना अच्छा होने के बाद भी माया देवी के मगरमच्छ ने आके उसको पकड़ लिया गजेंद्र को। तो हमें जानना चाहिए कि कभी भी वो गजेंद्र आके हमको पकड़ सकता है, और इसके लिए कि मगरमच्छ हमको पकड़ ले उसके पहले ही हमें भगवान की शरण में चले जाना है। गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ा और कई साल युद्ध करने के बाद उसको इतना भगवान ने दिया कि वो जाके भगवान की शरण में चला गया। लेकिन हमको क्या करना है, भगवान के पास पहले चले जाना है। जैसे जब गजेंद्र कहते हैं कि भूरी करुणा है, तो करुणा का मतलब होता है कि भगवान की करुणा जो है, जैसे सागर में कितना लीटर पानी है, कोई गिन सकता है? नहीं। अगर कोई माप भी लेवे कि सागर में कितना लीटर पानी है, लेकिन कोई भगवान की करुणा को माप नहीं सकता। इसके लिए भगवान को क्या कहते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधो, कि भगवान पूरी करुणा से भरे हुए हैं। तो हमको मालूम नहीं है, तो इसके पहले के मगरमच्छ आके हमको दबोचे, हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी है और भगवान का आश्रय लेना है। तो जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, और भगवान का आश्रय लेने का सबसे अच्छा तरीका प्रभुपाद जी ने हमको क्या बताया है? भगवान के नाम का जप करना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस तरह जब जप करके हम भगवान का आश्रय लेंगे अच्छी तरह से, तो भगवान हम पे प्रसन्न होंगे और हम भक्ति के अंदर लग सकते हैं। तो इतना क्या करें, मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। आप सबकी सहन शक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, 10 मिनट, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है और हमारे पास टाइम है तो 2-5 मिनट कोई पूछ सकता है, नहीं तो हम यहीं पे एंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।